मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत हम लोग फिलहाल प्री एग्जामिनेशन के बारे में बातें कर रहे हैं और पता नहीं मैं कितना सही कर रहा हूं कितना गलत, लेकिन इसी से संबंधित विषय को मैं आज भी आगे बढ़ाना चाहूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ एक दो जो घटनाएं हैं सामान्य सी ही हैं उन्हें देख लेते हैं। आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा और रेडियो न्यूज़ में भी इस बात की चर्चा थी कि अफगानिस्तान के काबुल में, यानी कि जहां राजधानी है, वहां एक जो गर्ल्स स्कूल था वहां आतंकी हमला हुआ। है ना, लड़कियां जब छुट्टी होने के बाद स्कूल से निकलकर बाहर जा रही थी उसी समय वो हमला हुआ और उस हमले में ये माना जा रहा है कि लगभग 58 लोग मारे गए हैं, जिसमें स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा संख्या लड़कियों की है। ये घटना बहुत आपको एक वैश्विक स्तर पर घटी हुई महत्वपूर्ण घटना तो लग सकती है, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आप सोच सकते हैं कि इस घटना से क्या लेना देना है। ऐसा तो नहीं है कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों, दरअसल यह जो घटना है यह अफगानिस्तान में घटी एक आतंकित घटना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सच बात यह है कि इसे आपको जोड़कर देखना पड़ेगा कि अमेरिका ने यह घोषणा की है कि इस महीने तक वह अपनी सारी उन फौजों को जो अफगानिस्तान में मौजूद है विड्रॉ कर लेगा। नाटो की भी फौजें वापस चली जाएंगी, राइट? इसका मतलब है कि क्या यह माना जाए कि अब जबकि अमेरिका की फौजें वापस जाना शुरू कर चुकी हैं, फिर से पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर जो आतंकवादी ग्रुप हैं उनका कब्जा हो जाएगा? यह एक चिंता करने की बात है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने इस बात की घोषणा की थी कि वह अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा, अफगानिस्तान में और खासकर भारत में भी इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी थी कि इसके बाद अफगानिस्तान की हालत क्या होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिर से तालिबानियों के कब्जे में आ जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अफगानिस्तान का जो पूरा हिस्सा है उसमें लगभग 60% हिस्से पर तालिबानियों ने अपना अधिकार कर रखा है और ये वो तालिबान हैं जो अफगानिस्तान को एक प्रकार से एक इस्लामिक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं और भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए कि आप देखिए कि भारत की एक छोटी सी सीमा से ही पाकिस्तान की तरफ से मिलती है और अगर वहां इस तरह से आतंकवादी गुटों का प्रभुत्व हो जाता है तो पाकिस्तान तो तालिबान का समर्थक है, सहयोगी है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा न हो कि कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगें। और वैसे भी अफगानिस्तान में भारत बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके बहुत से प्रोजेक्ट में भारत सहयोगी है, उस लिहाज से भी भारत के लिए थोड़ा चुनौती भरा कार्य है। और आपने न्यूज में ये भी सुनी होगी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको इन चीजों को मार्क करना चाहिए और साथ ही साथ जोड़ करके भी देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इसका हमसे क्या संबंध है। अगर सच पूछे तो भारत से कोई इसका संबंध नहीं होता तो इस घटना की हम लोग चर्चा नहीं करते। अब देखिए, भारत ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि नहीं, भारत जो है ना वो शिक्षा का समर्थक है, चाहे वो बॉयज के एजुकेशन हो वो गर्ल्स का एजुकेशन हो, भारत उसका समर्थन करता है और इस तरह से आतंकवादी घटना का विरोध करता है और इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। अब आप देखिए कि जो इस्लामिक कट्टर इस्लामिक होते हैं वो महिलाओं के अधिकार का विरोध करते हैं कि नहीं नहीं महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको सार्वजनिक जीवन में जाने का अधिकार नहीं है, इस तरह की बातें वो करते हैं। तो भारत ने इस पर अपने यूं कह लीजिए कि विरोध दर्ज कराया है। जो दूसरी एक अच्छी घटना है, खबर है कहना चाहिए, घटना नहीं, वो ये है कि जो डिफेंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ मिलकर के एक दवाई बनाई है, पाउडर है बेसिकली, जिसका नाम है डी ऑक्सी डी ग्लूकोज। खासकर ये माना जा रहा है कि इस कोरोना के संकट में यह जो दवाई है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है और इसे आपातकाल उपयोग की अनुमति भी सरकार ने दे दी है। तो दोस्तों, लगातार कोशिश हो रही है वैक्सीन और दूसरी दवाइयों के माध्यम से इस कोरोना के संक्रमण को रोकने की, तो ये नाम आपको मालूम होना चाहिए डी ऑक्सी डी ग्लूकोज, और साथ ही साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि इसे किसने डेवलप किया है। ये हमारा पूरी तरह से स्वदेशी उत्पाद है, DRDO ने, जो डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर। प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं प्री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको लेकर के। अभी तक मैं एक सीरियल्स के तहत काम कर रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। अब दोस्तों फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अब हम एट्रेंडम क्वेश्चंस को लेते हैं और खासकर अब उन प्रश्नों को उठाते हैं जहां एक अलग किस्म का चरित्र दिखाई दे रहा है। यानी इससे पहले हमने देखिए कुछ चरित्रों के बारे में बात की है कि आपको इस तरीके से इसे देखना चाहिए, इस तरीके से इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो अब कुछ इस तरह के प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा, अदरवाइज हम लोग तो यहां 100 प्रश्न हैं तो 100 दिन तक तो इस पर चर्चा नहीं कर सकते। तो जब मैं अपने डी सीरीज का पेपर पलट रहा था तो अचानक ही जैसे ही मैंने बीच से उसे पलटा तो मेरे हाथ में आया, मेरे सामने आया क्वेश्चन नंबर 66। ये डी सीरीज का है क्वेश्चन नंबर 66। प्रश्न सुनिए क्या है। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी है। भाषा देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा यानी कि ब्रिटेन के द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी है। यानी कि इस पुस्तक में इस बात के प्रति सतर्क किया गया है कि ये जो औपनिवेशिक जो राज्य है यानी कि जो ब्रिटेन के लोग हैं, इन्होंने हमारे मस्तिष्क को बड़े खूबसूरत तरीके से जीत लिया है, यानी कि हमारी पूरी चेतना को बदल दिया और हम इससे बड़े खुश हैं कि हम आधुनिक हो रहे हैं, अरे ब्रिटिशर्स ने आकर के हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, उसी को यहां कहा व्यक्त किया जा रहा है। दूसरा, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया है। नुक्कड़ नाटक आप समझते होंगे ना, चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर नाटक करने लगते हैं, ये प्रचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। यानी कहीं भी कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे और कभी कभी सीरियल्स वगैरह भी इस पर बेस्ड होते हैं, आपने देखा होगा। तो जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसके प्रचार प्रसार के लिए इस तरीके के तरीके अपनाए जाते थे, राइट। तीसरा है, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग है ना, देशेर कथा, नाम क्या है, देशेर कथा, तो देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। ये तीसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प नहीं कहना चाहिए, तीसरा स्टेटमेंट है, सॉरी। अब आप देखिए कि कहा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, फिर है 1, 2 और 3, ये 4 विकल्प हैं। राइट, यहां मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जब इस तरह के विकल्प दिए जाते हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, फिर 1, 2, 3, तो आपको लगता होगा कि मामला कुछ ज्यादा जटिल हो रहा है और हो भी जाता है जटिल। लेकिन इस प्रश्न में आप देखेंगे कि यदि आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, आपने फैसला किया है कि आप इसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो प्रणाली है, ये जटिल बनाने वाली जो प्रणाली है, ये आपकी मदद के लिए सामने आ जाती है, क्योंकि इसमें फिर से आपको एक अलग आधार मिलता है सही उत्तर तक पहुंचने के लिए। जैसे मान लीजिए आप एक भी सही इसमें ढूंढ लेते हैं 3 स्टेटमेंट में से, या एक भी गलत स्टेटमेंट ढूंढ लेते हैं, तो फिर बड़े आराम से आप सही तक पहुंच जाते हैं। और अदरवाइज मान लीजिए कि 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उसमें से पूछ लिया जाता कि कौन सा एक सही है, तब आपके लिए ज्यादा कठिन हो जाता। सोचिएगा मेरी इस बात पर, विचार कीजिएगा, क्योंकि इस प्री एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। और एक बार अगर आपने चरित्र को समझ लिया ना, और इनफैक्ट मैं चरित्र को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप पाएंगे कि चीजें बहुत आसान हो गई हैं जो अभी तक आपके लिए बहुत डरावनी सी लग रही थी। तो अब आइए दोस्तों इसे, इसके चरित्र को देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न है आप सबसे, कुछ प्रश्न है कह लीजिए, आपने फ्रीडम मूवमेंट पढ़ा होगा, हिस्ट्री तैयार कर ली होगी, अगर तैयार हो गई है तो आप बताइए कि सच में किसी किताब में आपने सखाराम गणेश देउस्कर जो लेखक हैं ये नाम पढ़ा, अपवाद स्वरूप देखिए हो सकते हैं कि किसी किताब में मेंशन किया हो, लेकिन जो बहुत एक जो प्रोमिनेंट बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी की किताब के बारे में इनफैक्ट मुझे नहीं मालूम कि अगर उसमें मेंशन किया हुआ होगा तो, और अगर मेंशन किया होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। और फिर उनकी पुस्तक है देशेर कथा, क्या आपने इसे पढ़ा? एक बात तो हम कह सकते हैं कि ये जो पुस्तक है ये बहुत प्रोमिनेंट पुस्तक नहीं है। प्रोमिनेंट का मतलब है कि हो सकता है कि उस तरह से प्रोमिनेंट पुस्तक हो, लेकिन इतिहास की किताबों में इसका उस तरह से उल्लेख नहीं मिलता है, राइट? लेकिन इस पर प्रश्न पूछ दिया गया है, तो क्या आउट ऑफ सिलेबस है? क्या आपके साथ अन्याय किया गया है? क्या नहीं पूछा जाना चाहिए था? और अगर पूछा गया है तो क्यों पूछा गया है? यह बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर इस प्रश्न से पूछ लिया गया है, या इस टॉपिक से आप कह लीजिए कि सखाराम गणेश देउस्कर से पूछ लिया गया है, उनकी किताब के बारे में पूछ लिया गया है, तो क्यों पूछा गया है? क्या उसके पीछे कोई उद्देश्य है? अब देखिए, सीधी सी बात है कि आपसे ये तो उम्मीद नहीं की गई होगी कि आपने ये पुस्तक पढ़ी ही होगी। मैं अभी इसके चरित्र के बारे में कल आपसे बात करूंगा, आज इतना वक्त नहीं है कि मैं इस पर डिटेल्स में अभी आपको कुछ बता सकूं, लेकिन जो मैंने आपसे प्रश्न किए हैं प्लीज आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में अपने पास रखिए, क्योंकि तभी आपके अंदर वो क्षमता पैदा हो पाएगी कि आप फटाफट किसी क्वेश्चंस में क्या चैलेंजेस हैं उन्हें समझ सकेंगे, और जैसे ही आपका दिमाग उन चैलेंजेस को समझ लेगा उत्तर तक पहुंच जाएगा, काफी कुछ पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं गौरी शाक्य, पार्थ, अमृत नारायण सतपति, हेमराज वर्मा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से, जगमोहन गोले बड़वानी मध्य प्रदेश से, और सीमा गुप्ता श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।